भजन करना चाहते हैं तो ऐसा तो लिखा ही है कि राधा कृष्ण ही हमारे प्राण है। अभी कीर्तन में इस कीर्तन को लालसामयी कीर्तन कहते हैं। हम कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं इसको नरोत्तम ठाकुर जी ने लिखा, राधा कृष्ण ही हमारे प्राण हैं, जीवन के सर्वस्व हैं। हमारा कब ऐसा सौभाग्य होगा कि चिन्मय हमारा शरीर होगा, ये शरीर छूट जाएगा और मैं राधा कृष्ण को चमर ढुलाऊंगा। राधा कृष्ण को चमर कौन ढुलाएगा? कोई भी पुरुष नहीं, कोई गोप भी नहीं, केवल गोपियां ही, राधा जी की छोटी सहेलियां ही, सखियां ही ढुला सकती। तो हमारा दिन ऐसा कब होगा? उनको अपने हाथों से तांबुल अर्पण करूंगा, पान की बीड़ी दूंगा, दोनों की सब प्रकार से सेवा करूंगा। कब ऐसा हमारा जीवन है? हे चैतन्य महाप्रभु, आपके सेवकों का अनुसेवक मैं हो रहा हूं, ललिता जी की दासी होकर के उनकी सेवा करना, इससे बढ़कर के और कोई भी प्रार्थना नहीं हो सकती। ठीक है, गुरु की क्या जरूरत है? राधा कृष्ण का भजन करेंगे, बांसुरी वाले का राधा जी के साथ में, गुरु की क्या जरूरत है? यदि हम अपना माल कोई खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो दलाल तो दलाली ले लेगा, तो गुरु भी तो दलाली कुछ ले लेगा। जरूरत नहीं, हम तो भजन करेंगे उनका, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता। भगवान अपने को बेच दिया है अपने भक्तों के पास। इसलिए श्रीमद् भागवत का पहला जो अध्याय उसके बाद ही मैं आरंभ किया है इसको। व्यास इतने धर्मशास्त्र को जानने वाले भगवान के अवतार हैं, फिर भी उनको अपने गुरु नारद जी का शरण लेना पड़ा और तब फिर उन्होंने योग्य गुरु ने योग्य शिष्य को दीक्षा प्रदान की और उनको पथ प्रदर्शन किया, तब उन्होंने सारे चीजों को, तत्वों को देखा। कृष्ण तत्व क्या है, जीव क्या है, भक्ति क्या है, इसको सब उन्होंने दर्शन किया। इसलिए बिना गुरु के नहीं हो, किंतु जैसे तैसे गुरु से नहीं होगा। जो खुद ही अपने गुरु की सेवा नहीं की, जो गुरु की मन की बातें नहीं जानता, वो कैसे सेवा कर सकता है, कैसे दूसरों को दे सकता है? कृष्ण जिसके कृष्ण हृदय में विराजमान हो वही दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता। जैसे तैसे लोग जिनकी इंद्रियां वशीभूत नहीं है, कामी हैं, पैसे के लोभी हैं, जितेंद्रिय नहीं है, जिनको खुद ही तत्व का ज्ञान नहीं है, भूले भटके हुए हैं, खुद ही यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इधर उधर में जा रहे हैं, तो वो दूसरों का गुरुत्व कैसे कर सकते हैं? इसी विषय को हमारे माधव महाराज जी अभी संक्षेप में नारद और व्यास का थोड़ा सा संक्षेप में संवाद देते हुए और गुरु तत्व पर कुछ विवेचन हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। खड़े होकर के जानने चाहिए। खूब ध्यान से सुनना, ये चार पांच दिन का समय हमें दे देना, हमारी कोई यदि गलती हो तो बतला देना, डरने की बात नहीं है। जो आप ये ठीक नहीं कह रहे और यदि ठीक कह रहे हैं तो उसको पालन करना चाहिए। इस तरह से सबसे पहली बात, इन सब चीजों के लिए मांस मछली का आहार न करो, जीवन नष्ट हो जाएगा। मछली जो हमारे, यदि किसी को टीबी कैंसर हो गया उसको भी थूक देगा तो वो मछली खा जाएगी। वो गाय का मांस, शुकर का मांस सभी कुछ खाती है, इसलिए मछली का मांस खाने से सब कुछ खाना हो गया। खबरदार मांस मछली अंडे गोश्त सबसे ये दूर रहो, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी और थोड़े ही जीवन में आयु समाप्त हो जाएगी। वो मछलियां अभिशाप पात देंगी, श्राप देंगी, तुम मर जा जल्दी, तुम्हारी स्त्री विधवा हो जाए, ऐसा अभिशाप देती हैं। इसलिए खबरदार मांस मछली मत खाओ। जो लोग मांस मछली खाते हैं और कंट्रोल नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है, तो क्या होगा, अंडा गोश्त इत्यादि खाने से वो थोड़े ही उम्र में मर जाते हैं। उनको कुछ ऐसा रोग हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए खबरदार मेरे प्यारे बच्चों, इसे सावधान रहना, मत खाना कभी। शराब का उपयोग मत करना, ड्रिंक मत करना, किसी भी चीज से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस तरह से हमारे बातों को मान करके चलो, सुखी हो। अभी महाराज जी अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं।
तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
संक्षेप में
सबसे पहले मैं गुरुपाद पद्म के चरण कमल में असंत कोटि दंडवत प्रणति अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वृंद ध्वनि कथा समान विकास श्रोतागण को यथाजोगी वंदन ज्ञापन करता हूँ। तो गुरु जी ने आदेश दिया, हम सब तो भगवान का भजन करना चाहते हैं, बीच में गुरु जी का आने की जरूरत क्या है? इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए गुरु जी ने आदेश दिया, जो भागवत के प्रणयन करता, जगत में वेद को प्रकाश करने वाले व्यासदेव एवं उनके गुरु नारद ऋषि के चरित्र को अवलंबन करते हुए इस विषय का कुछ आलोचना करूं। आप सभी लोग व्यासदेव के नाम जानते होंगे, जिन्होंने ये समस्त ग्रंथ प्रकाश किया, गीता भागवत ये सब प्रकाश किया। एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे, सखा ऐसे लगता है कुछ खो गया हो, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इतने में उनके गुरु नारद ऋषि भ्रमण करते हुए उनके संबंध आश्रम में पहुंचे। गुरु जी को देख करके उठ कर खड़े हुए, उनको प्रणाम किया। नारद ऋषि से पूछा, वैस आपका सर्वांगीण कल्याण है ना? जैसे कह रहे, नहीं गुरु जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरा सर्वांगीण कल्याण क्यों नहीं है, मेरा मन प्रसन्न नहीं है। नारद ऋषि ने पूछा, क्यों नहीं बेटा, तुमने तो ये 18 पुराण 18 उपपुराण 18 शाखा पुराण प्रकाश किया, वेद को प्रकाश किया, वेद को विभाग किया और समस्त जातियों के लिए महाभारत को प्रकाश किया,
वेदांत
सूत्र का ही प्रणयन किया और महाभारत में सबसे जो गुरुत्वपूर्ण उद्धार शांति पर्व जिसमें कृष्णचंद्र जी अर्जुन को लक्ष्य करके समस्त जगत को उपदेश किया, ये भी तुमने प्रकाश किया, फिर भी तुम्हारे अंदर सुख शांति क्यों नहीं है, कारण क्या है? रूप में उत्तर दिया, गुरु जी मैं यही तो समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन क्यों शांत है, क्यों मैं शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। नारद जी ने बताया, देखो तुम सबके मन को इधर से डाइवर्ट कर दिया, कभी तुम पुराण में लिखा किसी की सबसे बड़े हैं सर्वे सर्वेश्वर स्वयं भगवान है, कभी कुछ मैंने कालिका पुराण में बताया काली सबसे बड़ी है, उनसे जगत प्रकट होता है, सब करती है, कभी तो इसी देवता को कभी और किसी देवता को ऐसे भगवान बताया, तुमने तो ये नहीं कहा कि कृष्णस्तु तो भगवान स्वयं, ये कभी कहा तुमने? कहा आपने? गुरुजी नहीं तो क्या आपने कहा कि स्वयं भगवान कृष्णचंद्र सखाओं के प्रेम में वशीभूत होकर के उनके द्वारा वो हार जाते हैं? कभी श्रीराम से लड़ने का अपने गुरुजी से सुना? श्रीराम जी कहते हैं आप कौन से बड़े लोग हैं, कौन से धनी व्यक्ति हैं? आपके पिताजी का नलक कैया है तो मेरा पिताजी का गहला कैया है, मैं तो आपसे बढ़ करके हूं। कृष्णचंद्र जी कहते नहीं, मैं सबसे भगवान हूं, सब ससुर को पछाड़ता हूं, ये करता हूं वो करता हूं, ऐसे दिखा गए थे। श्री बताओ कि दिख मत को तो दोनों में कुश्ती हुआ, कुश्ती में कृष्णचंद्र जी को श्री राम ने पराजित कर दिया। पराजित होकर के भी कह रहे हैं मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। मैं तो सब सखा ने कहा एक कान्हा तुम कैसे कह रहे हो कि तुम जीत गया? हम सब ने देखा कि सिद्धांत तुम्हारे पीठ को जमीन पर लगा दिया। कृष्ण ने बताया देखो मेरा पीठ जमीन में लगने पर भी मेरा नाम तो ऊंचा था और सिद्धांत का नाम नीचे था, तो जीता मैं नहीं है, तो ऐसे क्या लिखा? नहीं तो गुरु जी। फिर पूछा क्या तुमने ये लिखा कि संत भगवान होकर के भी माँ दशहरा की गद्दी में चढ़ने के लिए ललचते हैं, रोते हैं, कभी मैया उनको डांटती है, दपकती है, कहता है तुम बंदर बंदर हो, तुम अभी मैं स्नान करके नया वस्त्र पहनाया, तुम मिट्टी में सब मिला दिया, मैं तुम्हें गद्दी नहीं दूंगी, तुम्हें स्तन नहीं पिलाऊंगी, कभी कान उबेड़ देती है, कभी आप शैतानी करने पर उखल से बांध देती है, क्या आपने ये सब लिखा? नहीं गुरु जी, मैं तो नहीं लिखा। क्या आपने लिखा कि स्वयं भगवान कृष्णचंद्र जी राजगोपियों के प्रेम में वशीभूत होकर के अपने शीश उनके चरण में दे देते हैं और कहते हैं न पारे हम निरवत्त संविजान ससादुत्रित विमुदाले साधिवो? हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उग्र नहीं हो सकता हूँ, मुझे अपने कृपा के द्वारा मुझे उग्र कर दो। क्या इस सब आपने लिखा? बोले नहीं तो गुरु जी। क्या आपने लिखा कृष्णचंद्र जी स्वयं भगवान होकर के राधिका से मिलने के लिए उनके कुंज के तार पर आकर के काकुति मिनती करके राधा जी के जो सहेलियां हैं उनके जरा प्रार्थना करती है करते हैं, ये कभी लिखा? नहीं गुरु जी, मैं तो जानता ही नहीं, ये लिखू कैसे? तब नारद से बताया भक्ति जयेन मन से सम्मत प्रणिहित अमले अपसत्पुर संपूर्ण माया दरबार स्वयं। भक्ति योग के द्वारा मन को स्थिर करने पर तब आपके हृदय में सब प्रकटित होगा। तो नारद ऋषि के कहने के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार भक्ति योग के द्वारा वो स्वयं भगवान को, उनकी समस्त बोली, उनकी समस्त लीलाओं को, उनके लीला परिकरों को सबको दर्शन किया। केवल भक्ति योग के द्वारा ही शांति मिल सकती है। तब गुरु जी ने बताया योग का अर्थ क्लास, एक क्लास एक में दो होता है, एक अर्थ क्लास एक में एक कभी नहीं होता है। जगत में एक नाम का चीज है ही नहीं, जीव और भगवान। कल सनातन धर्म के आलोचना प्रसंग में गुरु जी ने बताया था कि योग का तात्पर्य जीव कैसे भगवान के मिल, भगवान से मिल करके भगवान की सेवा करेगा, भगवान से मिलकर के एक नहीं हो जाएंगे, भगवान में नहीं मिलेंगे, भगवान से मिलेंगे। जैसे आप सब लोग प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, आप सब लोग गुरु जी से मिलकर एक नहीं हो गए हैं, सबका सबका पृथक पृथक है, ऐसे जो का तात्पर्य है कि हम कैसे भगवान के साथ मिलकर उन्हें सेवा कर सकते हैं। जैसे कल गुरु जी ने उदाहरण दिया था कि दीवार खड़ा करने के लिए ईट और ईट को जोड़ने के लिए सीमेंट का गिलावा जरूरत है, ऐसे ही भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए हमें प्रेम का संबंध जरूरत है। ये बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला, जब तक आपके हृदय में प्रेम प्रकट न हो भगवान नहीं मिलेंगे। यही जो तात्पर्य है कि सदगुरु चरण आश्रय करके हम भगवान की सेवा करें, ये स्वयं भगवान कृष्णचंद्र जी अर्जुन को बताया। अब हम आते हैं कि गुरु जी का परिचय क्यों है, जैसे व्यासदेव व्यासो नारायण स्वयं व्यस्त नारायण होकर के भी नारद ऋषि को गुरु बन करके जगत को शिक्षा दिया। व्यस्त की बात ही क्या, जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आए तो स्वयं रामचंद्र जी, सीता देवी, उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उर्मिला, मांडव, सुतकृति और दशरथ महाराज जी, सब रानिया, सब लोगों ने कोशिश जी से गुरु दीक्षा ली थी। और लीला पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्णचंद्र जी आकर के भागवती से दीक्षा ली थी, इसलिए गुरु दीक्षा अत्यंत प्रयोजनीय है। शास्त्र में कहा गया, गुरु दीक्षा विहीन न सिद्धि न सद्गति, अतः सर्व प्रयत्न गुरु ना दीक्षित भवे। गुरु दीक्षा के सिवा किसी कर्म में सिद्धि नहीं है, भजन में भी सिद्धि नहीं है और सद्गति भी नहीं मिलेगी, इसलिए सर्व प्रकार से प्रयत्न करके सदगुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। क्यों, गुरु जी भगवान का अत्यंत प्रिय है। कोई कहते हैं मैं आपका भगवान के पास गया भजन करने के लिए, भगवान कहते हैं अहो तू मेरा भजन करना चाहते हो, ऐसे तो नहीं है, कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। क्या नियम, प्रथमं तु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनं तदिसा भगवत भक्ति जन्मथा निष्फलो भवे। पहले तुम अपने गुरु जी की पूजा करो, पहले गुरु दीक्षा लो, ततश्चैव ममार्चनं तब मेरा भजन करो, तब तुम्हारी सिद्धि होगी, नहीं तो सब कुछ किया हुआ सब बेकार हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए तुम्हें गुरुकरण करना ही पड़ेगा। फिर कोई पूछते हैं क्यों गुरु जी का जरूरत क्या है, हम ऐसे आपका डायरेक्ट भजन कर लेंगे। भगवान कहते नहीं बेटा, गुरु जी तुम्हारे परम भक्त हैं, अहम भक्त पराधीनो जसतंत निवादिज सदवीर दस्त हृदय भक्त ही भक्त जनप्रिय। भगवान दुर्वासा ऋषि से कह रहे हैं देखो अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त का पराधीन हूं, भक्त अपने भक्ति के द्वारा मुझे खरीद लिया है और उसने मेरा हृदय पर अधिकार करके रखा है, उनके सिवा मैं कहीं नहीं जा सकता हूं, और मैं अपने को भक्तों के हाथ में बेच दिया, वो जहां चाहे मुझे बेच सकते हैं। इसलिए कहा शास्त्र में कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पालो तुम्हारा सपति आशे, सब गुरु एवं वैष्णवगण क्या है, वो कृष्ण को अपने भक्त खरीद रखा हृदय में, वो दूसरे को कृपा करके दे सकते हैं, जैसे सदगुरु चरण से करने पर तभी हमें भगवान की कृपा मिलेगी, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। ध्रुव महाराज जी को भी देखिए, भजन करने के लिए आए, मथुरा यमुना में स्नान किया, मधुवन में जाकर के भजन करना चाहते थे, भजन नहीं कर सके। नारद ऋषि आए, भगवान के आदेश क्रम से उनको दीक्षा दी, तब उनका भजन शुरू हुआ। इसलिए सदगुरु चरणाश्रय किए बिना आज तक न कोई भजन कर सका और अभी न कोई कर रहे हैं, न भी कर सकते हैं, इसलिए सदगुरु चरणाश्रय करके भजन करना पड़ेगा। और गुरु पूर्ण का लक्षण क्या है, शास्त्र ने बताया तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासुस्य उत्तम शब्दे पारिचर स्नातम ब्रह्मरूप समाश्रयम्। गुरु आपके कल्याण चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, तस्मात् गुरु प्रपद्ये गुरु जी के पास में जाना पड़ेगा। उनका लक्षण क्या है, कुछ तो लक्षण हुआ किसी जिस जिसके पास जाने पर तो नहीं चलेगा, उनका लक्षण क्या है। दो लक्षण है, एक है आभ्यंतरीण लक्षण और एक है बाह्यिक लक्षण। बाह्यिक लक्षण क्या है, वो सर्व शास्त्र में सुपंडित होंगे, आपके किसी प्रकार के भी संशय हो वो शास्त्र उदाहरण के द्वारा वो समस्त संशय को दूर कर सकते हैं। और उपसमास स्वयं जगत से अनासक्त होंगे, जिसके लिए हम चांदी धरने के लिए मर रहे हैं वो भी ऐसे हो वो सदगुरु कहलाने योग्य नहीं है, वो जगत के विषय से उपरोक्त होंगे। ये तो बाह्यिक लक्षण है। और आभ्यंतरीण लक्षण, वो भगवत अनुभूति संपन्न होंगे, इस लक्षण से युक्त हो ये देख करके आपको गुरुकरण करना पड़ेगा। जैसे कहा गया पानी पियो छान के गुरु करो जान के, आप यदि गंदा पानी पिएंगे बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे गुरु कर्म करना है, शास्त्र में जो बताया गया है से देख करके गुरु कर्म करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सार्थक होगा, सुखमय होगा और आप भजन आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप लोग से सम्मान करेंगे, इसमें कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे, कुछ अच्छा लगे तो आप लोग भी समस्त प्रकार भजन करके करके भजन करेंगे। यही मेरी प्रार्थना है।
इफ ए पर्सन हैज बीन इनिशिएटेड बट आफ्टर सम टाइम ही न्यू दैट दिस गुरु कैनॉट हेल्प मी, दोज इज सिंसियर बट इज नॉट knowing all perfect tatvas, then what he should do and what he will think? Ashram Maharaj. What are the symptoms and how he will think about this?
ज्ञानंजनाशलाकय चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चकापातुरुभ्यश्च विपश्यन्तेभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसन्नि गोमतन्त्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। So before speaking, first I'd like to put my most respectful obeisances, thousands and thousands of fans of the Lotus Feet of Mahatma Dikshu, and literally that permission of Vishnu Parasa Prasata Shishma, Srila Gaurava and Goswami Maharaj. So I'd like to offer my most respectful obeisances again thousands and thousands of times. Unto Lotus Feet of my sannyasa Shishu Guru, and Vishnu Parasa Prasata Shishma, Srila Bhaktivedanta and Goswami Maharaj. And also my most respectful obeisances in Hindu times. Unto those who speak to my hand, who is with me, that Krishna, Krishna, Parasa, Prasada, Shishma, Shila Desi, Bhaktivinoda Swami, Shila Gopal, to me, that Krishna, Krishna, Parasa, Prasada, Shishma, Shila Bhaktivinoda Krishna, Shishma. So, Shila Gurudev, he says, upon accepting shelter of the spiritual master, if one is seeing that the qualities which Uttapada Mother for us has mentioned, that they're not fully manifest, then what should one do? So, to reiterate the point, the qualities of a bona fide spiritual master are Tas mat gurum prapadye tat ki kyasi shre uttamam shabde parijan sukham brahmi asana shrayam. That he is free from the desire of all sense gratification and he is fully conversant with the spiritual injunctions. So these are external. Many people, they may externally manifest qualities of being very, very conversant with scriptural injunctions. They may be able to quote, they may have very great intelligence, and may be able to defeat others, may be able to present with great logic. And also, they may manifest qualities of being very detached. An example. Once, there was a jackal, and the jackal was in the forest and it came across a big bucket of paint, and it went into this big bucket of paint, and all of a sudden the jackal changed its color and the jackal became blue. Then the jackal was roaming in the forest, and all the different animals in the forest, they could not recognize that, oh, that this is a jackal. And then they thought, oh, that this animal, this is so unusual that this must be the king of all the animals. And then they started to offer all kinds of worship. They put the jackal on a high throne and they worshiped the jackal. But the jackal inside, it had its own suru. Means that somebody may apparently manifest different qualities and may act as if that they're bona fide in so many ways. They may be able to quote Shastra. They may be able to present so much logic, but their inside Swarup is not changed. So this jackal took the position of being king of all the animals and was accepting all kinds of worship. But then one evening, one female jackal was roaming in the forest, and the female jackal started to make a noise. And then immediately, the male jackal, he forgot his Swarup. He forgot that, oh, now I'm being worshipped as Bhagwan, as king of all the animals. And immediately, this jackal jumped up from his throne and started running after the female jackal, going, So in this way, it's illustrating that we may manifest qualities externally, but that doesn't mean that actually inside these qualities are there. So what is the third quality of bona fide guru? That he has realized the Supreme Lord. That he has realized what is his relationship with the Lord, whether in as a friend, as a servant, in a parental mood, or in material rasa, in conjugal mood. He has realized. And he, when giving initiation to disciple, then he can actually transfer this transcendental shakti. At the time of initiation, guru is giving. He's giving transcendental knowledge. He knows what is the position of disciple, what is the disciple's eternal relationship with the Supreme Lord, and he's removing all sinful activities. So, naturally, the disciple approaching guru, he will have a particular move towards the guru. What is this? This is explained in Srimad Bhagavatam. Acharyamam vijanyam guru. That one should see the acharya or the guru, Krishna is saying, one should see him as my very self. One should not disrespect or envy him in any way. One should understand that he is the sum total of all the demigods. So disciples should have this understanding of guru. That he is Sevaka Bhagavan. He is the supreme personality of service of Godhead. That when his mercy is manifested within this material world, his mercy is manifested in the form of Gurudev. So worshipping Gurudev like this, understanding that by mercy of Guru, then one can achieve the lotus feet of Krishna, then one gives all respect. But then, after some time, one may see that, oh, I worship in Gurudev as Acharyamam Vijanyam, as the manifestation of the mercy of Krishna. But now I'm seeing that the qualities which the Shastras have said, which are there for Guru, that maybe they're not being fully manifest in this personality, or this person's personality is not manifesting. So what should a disciple do? So a disciple should pray with the heart. That I have come to this bhakti line, and I've come to achieve Krishna prayer. Praying dan vino vyata daridra jivan. Dasa koi veta more devo premadan. That I come to achieve this goal of Krishna praying. And without this, then I'm very, very poor. I'm a daridra jivan. So praying to lotus feet of Sri Sivana and Krishna. Praying to Lord Nityananda. Especially Lord Nityananda. He's a kind of guru tattva. That please manifest in the form of sadguru. And by these prayers, then Lord Nityananda, definitely, he will reciprocate and he will manifest in the form of Sadguru. Upon coming in contact with Sadguru, with one whom one is feeling within the heart that, oh, that this person, that really is manifesting the qualities of Guru. And one is feeling Guru Padashraya, that I can really surrender my heart to this personality. My body, my heart, my soul, everything I can surrender. But one already has taken shelter of another personality. So now this is creating some dilemma. What should? Because one should always be faithful to one's guru. So, one, taking permission from one's Diksha Guru, then one should ask permission to approach the senior Vaishnava and take Shiksha. And if the Diksha Guru really is Vaishnava, he may not be Uttam adhikari. He may not be Uttama Mahabhagavata, the highest level. But if he is at least in the Madhyam stage, manifesting the qualities of a Vaishnava, then very happily you will say, yes, you go. You go and take shelter. Not only you go and take shelter, but what you have learned from this Mahapurush, that, oh, you please come back. And you please also you share this with me. This is Vaishnavism. Vaishnavism is very broad, very liberal. That one is not thinking that, oh, he's my disciple. But rather, he is saying that, oh, my Gurudev, he has made so much arrangement that so many people come in so that I can speak Hari Katha. And he will not think that this is my property, but he will understand that nothing is mine. So he will be happy to see that that person who's come to take shelter of him is progressing nicely in the spiritual life. But, and even if the situation is there, that one will go without taking permission. In our history, we have the example of Srila Raghunath Das Goswami. Srila Raghunath Das Goswami, he had taken initiation from Yadunandacharya. Yadunandacharya was a highly elevated soul, an associate of Advaita Acharya. But Raghunath Das Goswami, he snuck away from his home, and then he went to take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu, taking shelter of Sri Damodara Goswami, and after taking shelter of Sri Rupa Goswami. But his spiritual master, Yadunandacharya, he was very, very happy for him. He did not feel that, oh, that my disciple, he did not tell me. But he felt very happy that his disciple had gone and taken shelter of Sri Damodara, who was a very intimate associate of Sri Sivarani Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu, and later on taking shelter of Sri Rupa Goswami. So, even if by chance the disciple, he's not going and he's not getting permission from Guru, but Guru will be very happy that the disciple is going and taking high association. But if the Guru, he tries to stop the disciple, then Srila Goswami in Bhakti Sandhava, he stated that yes, disciple, he should accept Guru as Acharya Mahi Janyam, Nava Mangeti Kaiji. But if after seeing that, oh, that Guru is not manifesting all these qualities and coming into contact with a high quality, very high level Shiksha Guru, he asked Guru to please, can I go and take shelter? And the Guru, the Diksha Guru, says no. Then Srila Jiva Goswami says that that person, he should be rejected. That for bhakti, then one, examples are there that one can reject one's spiritual master, that one can reject one's parent, that one can reject all these different relationships to advance in bhakti. Example is Bali Maharaj. Bali Maharaj, he was asked by Srila Bhavandev that, oh please, he came for three steps of land. His spiritual master, Shukracharya, he said, no, you don't give him these three steps of land. That this is Vishnu, but he's coming in disguise. But Bali Maharaj was thinking that, oh, that if I have the opportunity, that I can surrender to Lord Vishnu, that I can render some service, then my life will be glorious. So then, Bali Maharaj, he went to do Sankalpa. Doing Sankalpa, he had a pot with a spout. Shukracharya, because he had all mystic powers, he entered into the spout. And when Bali Maharaj, he went to pour out the water, it was blocked. Then he took a piece of straw from broomstick, or like broomstick, and then he took it and he pierced it into the hole of the spout, and immediately blood started to come out. What was this? That this was Shukracharya, his eye was blocked in the spout, and he stuck it in, and he blinded it. So this is a very, very strong example, but to show that to take shelter of bona fide guru, then whatever is blocking, then one should be able to break all barriers to take shelter. Because without taking shelter of bona fide guru, then one will not be able to achieve the path. So Srila Jiva Goswami has stated that if guru, he is blocking the path, then this means that that person really is not in the position of guru. But rather, he's Kanduru. Srila Jiva Goswami is not saying Kanduru. But we should understand this Kanduru. What is the quality of Kanduru? That Kanduru, they're jumping here and there. and they have big pocket, and they're taking money, they're taking wealth, they're taking all kinds of prestige, and they're jumping here and there, and they're giving nothing to devotee. Only thing they're giving headache and problems to devotee. So, injunction is that in all situations, one should accept the lotus feet of bona fide guru. And if there's any blockage in the path, then without hesitation, then one should approach bona fide guru and have no fear that one has full protection of Sri Shivaya Krishna Sri Chaitanya Mahaprabhu. That's the government.
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मैतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मां सप्रथमे अपने परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाल श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि श्रद्धा प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाल श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि बार चरण अभी श्रीपाद माधव महाराज और अरण्य आश्रम महाराज जी ने गुरु तत्व के संबंध में बतलाया। यदि आप बाजार में एक हड़िया मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हैं या जाती हैं तो उसे लकड़ी से बजा करके लेते हैं, यदि खनखन करती है तो मत लो फूटी हुई है, और ठन ठन कर रही है तो ले लो। तो एक दो पैसे की हड़िया के लिए उसे बजा करके देखते हैं, और जिनके चरणों में हम अपने को अर्पित पूर्ण रूप से कर भी जा रहे हैं, जीवन को दे रहे हैं उनके लिए, तो उनको क्या अच्छी तरह से समझ करके नहीं लेंगे? अच्छी तरह से समझो, ये कृष्ण प्रेम कृष्ण की सेवा में दे सकते हैं कि नहीं, ये स्वयं कृष्ण का भजन करते हैं कि नहीं, अपनी गुरु की सेवा किया कि नहीं, और ठीक उस पे पथ से चलते हैं कि नहीं। बहुत से लोग हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी से, जिनको प्रभुपाद पश्चात देशों में कहा जाता है, हजारों लोग संन्यास किया, मंत्र दिया, उनमें से जितने सन्यासी थे करीब करीब सभी लोग अपने वैष्णव धर्म को छोड़ करके लौट गए घरों में। उनके गिरोह घोर विरोधी हो गए, उनमें विश्वास नहीं रहा, क्यों छोड़ करके चले गए? फिर वो यदि गुरु का कार्य करें जो कि खुद ही गुरु को नहीं मानते, तो उनके मंत्र से क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए वो जो गुरुजी से गुरुजी की सेवा करके तद विद्धि पढ़ी पाते न परिप्रश्न सेवा उपदेशंत ज्ञान ज्ञान न तत्व दर्शन इनके पास में जाओ, जाने से तुमको तत्व ज्ञान होगा, जो इस विषय में जानने वाले हैं, पारदर्शी हैं, उनके चरणों में जाओ, उनकी सेवा करो, अनकंडीशनल सरेंडर करो और प्रीतिपूर्वक उनसे पूछो हमारा कल्याण कैसे होगा, कृष्ण के चरण में कैसे प्रेम होगा, तो वो तुमको उपदेश देंगे। ऐसे ही नहीं हो जाता। गुरु का लक्षण इन्होंने बताया, संसार से परम विरक्ति उसको होगी, संसारिक अटैचमेंट उसका कट जाएगा और कृष्ण के चरणों में जिनका अनुराग हो, सर्वदैव हरि नाम संकीर्तन करते हैं, वैष्णव के चरणों में कभी भी अपराध नहीं करते हैं, ये लोग गुरु नहीं छोड़ते। इसलिए रूप गोस्वामी ने बतलाया, जो जितेंद्रिय हो, अपने समस्त इंद्रियों को वशीभूत करने वाला हो, मन में क्रोध में जीवा में उदर में पस्त में, ये सबको काबू में रखने वाला व्यक्ति ही सारे जगत का गुरु हो सकता है। यदि गुरु कर्ण के समय में उसको हमने नहीं समझ सका, उसका अच्छी तरह से विचार नहीं कर सके, कुल गुरु से मंत्र लिया, कुल गुरु हमारे भारत में ऐसा है, जब कुल गुरु लोग गुरु परंपरा से, अपनी परंपरा से वो लोग शिष्य बनाते, उधर गुरु का पुत्र प्रपौत्र आफिदर शिष्य का भी पुत्र उन्हीं से शिक्षा और ये सब लेता है, गुरु मंत्र लेता है। यदि वो सचमुच में गुरु होता तो ठीक है, आज जो गुरु खुद ही पीढ़ी सिगरेट पीता है, चाय पीता है, भगवान में रुचि नहीं है, नाम नहीं करता, अपवित्र रहता है, संध्या नहीं करता है, गायत्री मंत्र इत्यादि नहीं करता है, उस गुरु से क्या लाभ होगा। इसलिए ये सब विचार करके तब करना, यदि ले लिया भी है तो पुनः वैष्णव गुरु से मंत्र ले करके, हमको जरूरत है तत्वज्ञानी गुरु जो हमको कृष्ण को दे, कृष्ण प्रेम दे। यदि वो गुरु समर्थ नहीं है तो हम क्या करेंगे, गुरु से कहेंगे महाराज जी, गुरु जी आपसे मंत्र तो लिया नहीं लिया, किंतु मैं चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि वो बड़े योग्य गुरु हैं, खुद भजन करते हैं, इसलिए आप आदेश दें, मैं उनके पास में जाऊं, कुछ सीखूं। यदि प्रसन्न होकर के यदि आदेश दे दिया तो वो ठीक है, उनको प्रणाम करके कोई सतगुरु से फिर हरिनाम दीक्षा। और यदि वो नहीं देते आदेश, कहते हैं कि उनके पास में मत हरि कथा सुनने मत जाना, क्यों नहीं जाना, यदि गुरु सत्संग को ही निवारण करता है, जब सत्संग में मत जाओ तो वो गुरु कैसा है इसी से समझो, वो अपने शिष्य को अपना प्रॉपर्टी समझता है, शिष्य प्रॉपर्टी नहीं है, वो कृष्ण की प्रॉपर्टी है, इसको समझो। गुरु माने ही होता है जो कृष्ण प्रेम दे सके, जो प्रेम नहीं दे सकेगा कृष्ण का, जिसके हृदय में खुद ही प्रेम नहीं है, जो शंकाग्रस्त है, जिसका चित्त चंचल है, विक्षिप्त है, पैसे के प्रति आकृष्ट है, वैराग्य नहीं है, वो दूसरों को क्या सहायता कर सकता है। इसलिए उस गुरु को छोड़ करके शुद्ध गुरु ही करना कर, हमको कृष्ण प्रेम की जरूरत है, हम कृष्ण के दास दासी एटर्नल सर्वेंट है, इस चीज को समझना। इसलिए श्रीमद् भागवत में, गीता में, पुराणों में, उपनिषद में, महाभारत में, वेदों में, शास्त्रों में सब एक ही बात कही गई, दूसरी बात की सदगुरु का चरणाश्रय करके भगवान का। अब हम श्रीमद् भागवत से इन्हीं चीजों को अब हम कुछ व्याख्या करके बतलाएंगे। एक समय कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर, ब्रज की लीला, मथुरा की लीला और अंत में द्वारका की लीला और उसके भी अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में जितने दुष्ट लोग थे उनका संहार करा पांडवों में। युधिष्ठिर महाराज जी राजगद्दी पर बैठे, उस समय में वो वहां से लौट करके इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी में आए, वहां पर भी दुष्ट असुरों का संहार किया। संहार करने के बाद में अपनी लीला का संगोपन किया। इसके बाद में कलयुग आया, कलयुग को देख करके हमारे भारतवर्ष के ऋषि लोग संत्रस्त हो उठे, भयभीत हो उठे। कलयुग आ रहा है, बड़ा भयानक युग है। स्त्रियां होठ रहेंगी, केश ही उनका प्रसाधन होगा, पातिव्रत धर्म इत्यादि कुछ नहीं रहेगा, पतियों को बदल देंगी, पुरुष लोग भी ऐसे कामी होंगे, अपनी पत्नियों को उचित सम्मान नहीं देंगे, धर्म कर्म कुछ नष्ट कर देंगे। पाठक लोग हरि कथा सुनाने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए आएंगे, रामायण सुनाने के लिए, किंतु पैसे के लोभ से आएंगे, इसलिए कथा का सार भी निकल गया। तीर्थ में दुष्ट जौनों का अधिकार हो गया, वहां पर अच्छे लोग नहीं, सब बदमाश लोग, गुंडे लोग, आवारे लोग तीर्थ के तीर्थत्व को नष्ट कर देते हैं, इसलिए उसका भी कलयुग में सार नष्ट हो जाएगा। साधु संत भी जो बड़े बड़े गाल बजाए वही साधु संत होंगे, भजन करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तुलसीदास जी ने भी इस सबका वर्णन किया है, इसलिए कलयुग को आते देख करके बड़े घबराए और उन्होंने नैमिषारण्य में एक छत्र का आरंभ किया। छत्र माने हरि कथा सुनने के लिए, जैसे हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो हम लोग तो इकट्ठे हुए हैं केवल 5 दिन के लिए, और वो लोगों का सत्र चल रहा था बहुत दिनों से, उसमें सौनक आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब थे, सेल्फ रियलाइज्ड परम भगवत भक्त, भगवान को भी वशीभूत करने वाले ऋषि महर्षि उसमें थे। उसमें सुत गोस्वामी, उग्र श्रवा वो वहां पर उपस्थित था, उनसे प्रश्न किया, देखो अल्प आयुष सभ्य कला युग उसमने मंदाश मंद मत मंद भग्या ही उपद्रुत। ओ कलयुग आ रहा, इसमें कलयुग में रहने वाले लोग उनकी आयु बहुत छोटी होगी, द्वापर युग तक लंबी थी और आदमी भी लंबे लंबे होते थे, अब तो बैगन पर चढ़ने के लिए भी, बैगन के पेड़ पर, बैगन जानते हैं, उसके पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा उनको। अब बेटा अपने बाप से भी छोटा छोटा होते 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 अब बहुत छोटा हो गया, बुद्धि भी अकल भी छूटी हो गई, मंदा बुद्धि मंद और सुमंद मतयो दुर्भाग्य भी है, मंद भाग्य अत्यंत दुर्भाग्य, काम करते हैं सुख के लिए होता है दुख, उपद्रुता नाना प्रकार के उपद्रव लगे हुए हैं। अभी आप लोग अभी तक 2-3 वर्ष पहले तक बड़े सुख से फिजी में निवास कर रहे थे, बड़े आनंद से और सुख से, हाथ हटात बगावत भी, और एक दिन में फिजी चेंज हो गया, हिंदू लोग यहां से भागने लग गए, देखते हैं कि यहां पर तो अब तो बड़ी गड़बड़ी होगी, इसलिए दूसरे देशों में भी शरण न ले लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि फिजी में हिंदू लोग, भारतीय लोग की संख्या कम हो गई, अब अपने मनमाने रूप से वो लोग करेंगे, कौन जानता था ऐसा। ऐसा ही होता है, हम लोग भगवान के लोग से गिरे हुए हैं, हमारा यह स्थान नहीं है, हम लोग रिफ्यूजी हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितने लोग, लाखों लोग रिफ्यूजी हो गए, लाखों लोग कट गए, यहां पर तो अधिक मारकाट नहीं हुई, भारतवर्ष में बड़ी मारकाट हुई, लाखों लोग मारे गए, स्त्रियां विधवा हो गई, उनके स्तन काट लिए उनके पतियों के सामने, क्या क्या ये सब हुआ, नंगे करके वहां से रेलों में लोगों को काट काट करके पाकिस्तान से लोगों को, भारतीय लोगों को भेजने लगे। तो यहां से भी ऐसा ही हुआ, मार काट करके गाड़ियों में रेलों में उनको भरने लगे। ऐसे उपद्रव किसी कल्पना नहीं कर सकता था, कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे ही राष्ट्रद्रोह इत्यादि होते हैं जगत, ये सुख का स्थान नहीं है, वो मूर्ख है जो इस जगत में सुख और शांति मांगते हैं, केवल भगवान नाम के द्वारा ही होगा। इसलिए कलयुग के लिए प्रश्न कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि लोग, किससे, सुत गोस्वामी से, अपने शास्त्रों को पढ़ा है, तुम सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हो, भागवत रामायण पुराण वेदांत वेदांत सूत्र इत्यादि महाभारत सब अच्छी तरह से समझते हो जानते हो, इसलिए उसका सार संक्षेप में बतलाओ। आयु कम है, हम लोग दुर्भागे हैं, इसलिए ऐसा सा करके बतलाओ, जय आत्मा संप्रसिद्ध, आत्मा सुप्रसन्न। ये नहीं कहा कि मैं किसके लिए प्रश्न किया, आत्मा के लिए, जय आत्मा संप्रसिद्ध। असल में आत्मा ही इस शरीर में है, यदि आत्मा इसमें से निकल जाती है तो वह शरीर सड़गल जाएगा एक दिन के अंदर, मरकर भूख पिशाच हो जाएगा। लोग मरने के बाद में अपना पति भी हो, बेटा हो, भाई हो, पति हो, पिता हो, उसी दिन उसको दाह संस्कार इत्यादि करते हैं, फिर घर को पवित्र करते हैं, यज्ञ होता है, ब्राह्मण लोग आते हैं, नाना प्रकार के पूजन इत्यादि होता है, क्यों, यह शरीर आत्मा नहीं है, हम आत्मा इसके अंदर में है, हम परमात्मा के अंश हैं और भगवान के नित्य दास हैं, इसके भूलने की वजह से ही यहां आए हैं। इसलिए वो बतला रहे हैं कि कैसे आत्मा हमारी प्रसन्न होगी, उसी को संक्षेप में आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूं, कैसे आत्मा प्रसन्न होगी। आप जितना भी अच्छा से अच्छा खाएं, चाहे डॉक्टर ने कह दिया मछली का तेल खाओ, मछली खाओ, शुकर का गोश्त खाओ और सब खाओ, उसे शरीर की पुष्टि होगी किंतु मन नष्ट हो जाएगा, पाप है ये। एक बार मैं इटली में गया, मैं रोम के पास ही एक स्थान है वेटिकन सिटी, वहां पर पादरी जो होलसेल पादरी पोप रहते हैं, वहां गया, लाखों लोगों की भीड़ पोप को देखने के लिए, और वो ताजमहल से भी लाख गुना कीमती बना हुआ है, चारों तरफ मार्बल और कितनी कितनी चीजों से बना हुआ है, और लाखों लोग दर्शन करने के लिए, हम लोग भी गए देखने के लिए, तो वहां देख करके मैंने कहा लाखों लोग आ रहे हैं पोप का दर्शन करने के लिए, मैंने कहा कि भाई यहां पर ये बछड़ों को देख रहा हूं, बछड़े और बछड़े बड़े बड़े मोटे ताजे फुदकते हुए बड़े सुंदर से सुंदर, मैंने बछड़ों को देखा, अभी दो एक दिन के बछड़े हैं, मैंने कहे बछड़े किस लिए, वो पोप इनकी पूजा करता है या क्या करता है, किस लिए ये मंगवाया, तुमने ये नहीं, ये कल के बस पथिक हैं, कल इनको काट करके पोप खाए, इसलिए। मैंने कहा और नाक बंद किया, चलो यहां से जल्दी भगो, यही धर्म है, यही ईसाई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, जिसमें छोटे छोटे बछड़ों को मार करके खाते हैं, इनका तो बड़ा भारी दुर्भाग्य है, ये पापों से नरक में जाएंगे, ये पोप नहीं है, पवित्र नहीं है, बस वहीं से मैं निकल करके चला, फिर मैं नहीं गया उधर। तो ये सब धर्म के नाम पर कितने ठपुसलाबाजी और पाप और अत्याचार होते हैं, ये विशेष करके कलयुग में ये विशेष करके होता है। इसलिए वो लोग पूछ रहे हैं जयात्मा संप्रसीदति, आत्मा कैसे प्रसन्न होगी। तो इसलिए आप लोग जितने भी डॉक्टर कहें, डॉक्टर का बाप भी कहे मांस मछली प्याज लहसुन गोश्त अंडे इत्यादि से धूम्रपान सबसे बचे रहे, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी और भगवान का भजन करके संसार में जीवन यात्रा निर्वाह होगी। आए हैं इस जगत में शुद्ध रूप में जीवन यात्रा करो, जिससे कि सात्विक वृत्ति हो, सात्विक वृत्ति से निर्गुण में आओ, निर्गुण से अपराधिक भक्ति में प्रवेश। इसलिए पूछने पर उन्होंने बतलाया उन्होंने कहा, उन्होंने अपने गुरुजी को प्रणाम किया। शायद पिछली बार मैंने उस प्रणाम का तात्पर्य भी बतलाया था, इसलिए आगे बढ़ रहा सब ही पुनसा परो धर्मो जतो भक्ति रथो खजे अहे दुख प्रतिजता जयात्मा संप्रसिद्ध। निश्चित रूप से सब धर्मों को छोड़ करके परम धर्म का पालन करो, परम धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। धर्म है क्या? स्त्री का पति के प्रति धर्म है, पुत्र का माता पिता की सेवा करना यह धर्म है, हम यहां पर हैं अपने देश की सेवा भी करना हमारा कर्तव्य है, ये भी एक तरह से धर्म है। देवता देवियों ने जो हमारे जन्म इत्यादि में सहायता की, वो भी उनकी भी हमको सेवा करना है, ये हमारा धर्म है। किंतु परम धर्म नहीं है, आत्मा से उनका संबंध नहीं है। यह शरीर किसका है? पिता माता जी कहते हैं कि ये मेरा है क्योंकि हमसे जन्म हुआ। राजा कहता है कि मेरा है, जेल में बंद कर देगा, ये मेरा है। ससुर कहता है हमने अपनी कन्या को दान किया तुमसे, इसलिए तुम मेरा पुत्र है। उसका बाप कहता है हमारा ये नाती है, ये मेरा है, मैं नहीं रहता तो ये कहां से नाती हो जाता। यदि किसी राजा ने जीत लिया तब वो किसका हुआ और कैद कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट को मित्र सेनाओं ने, चर्चिल कंपनी ने उसको पकड़ लिया, जेल में दे दिया और समुद्र में उसे ले करके डुबो दिया, कहा जाइए शरीर मेरा है, जीवित ही उसको समाधि दे दी। ऐसे ऐसे उदाहरण बढ़ेगा। तो यह शरीर किसका है? कौआ कहता है ये मेरा है, मरने के बाद में वो कौवे और श्रृगाल उसका मांस नोच चोत करके खाते हैं, वो कहेंगे ये मेरा है। आखिर अग्नि कहती ये मेरा है, मैं इसके जला करके खा कर, किसका ये शरीर है? इसका निर्णय नहीं, इसलिए इसके लिए अधिक चेष्टा मत करो, जितने दिन की आयु है वो रहेगी, इसके लिए चिंता करने जो सुख है बिना दुख के समान अपने आप आ जाएगा। जैसे दुख के लिए कोई आदमी प्रयत्न नहीं करता, दुख आता ही नहीं, कोई मृत्यु नहीं चाहता, किंतु मृत्यु कहती हम तुमसे शादी करेंगे ही जोर से चिपक जाती है, चिपकती है कि नहीं? जितने भागो मृत्यु छोड़ेगी। अभी तुम लोगों के लिए तैयार, हम लोगों के लिए तैयार बैठी है मृत्यु, जितना भी भागो वो छोड़ेगी नहीं, ये सौंदर्य नहीं रह जाएगा, गाल पिचक जाएगा, दांत टूट जाएंगे, आपकी दृष्टि कम हो जाएगी, ये शरीर है आत्मा नहीं। इसलिए आत्मा कैसे प्रसन्न हो, ये प्रश्न क्या उसका उत्तर दे रहे हैं, सवई पुंसम परम धर्म, भगवान की जो भक्ति है यही परम धर्म है, इससे बढ़कर के और कोई परम धर्म नहीं है। भक्ति क्या है? आत्मा का भगवान के प्रति प्रेम, यही भक्ति है। इसी को बतलाया गया अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाकृतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। जब तन से मन से वचन से तैल धारावत अभिछिन्न गति से दिन रात चौबीसों घंटा भगवान का चिंतन जब होने लगे, उनकी सेवा होगी, तब तो इसको उत्तमा भक्ति कहते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोगों के सामने एक दृष्टांत दूंगा। रामचंद्र जी वन को चले गए, माता और पिता के आदेश से। माता पिता कौन? कैकेयी मैया और पिता महाराज दशरथ। दशरथ जी ने तो कुछ कहा नहीं, मैया ने जबरदस्ती आदेश ले दिलवा करके उनको जंगल भेजा, अपने बेटे को भरत को राज्य दिलवाना, और राम को वन ने इसलिए भेजा 14 वर्ष में राम को भूल जाएंगे लोग और हमारा बेटा का राज्य स्थिर हो जाएगा। रामचंद्र जी चले गए, उनके साथ में लक्ष्मण और सीता जी भी चले गए। महाराज भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से आए, वशिष्ठ जी ने उनको बुलवाया, वो आए और विधवा के रूप में कुशलापुरी को अयोध्या को दे। मैया आई, मैया से पूछा कि तुम विधवा कैसे हो गई, सफेद वस्त्र और सिंदूर कहां गया? बेटा तुम्हारे लिए सब कुछ किया। क्या किया? तुम्हारे लिए मैंने राम को वन में भेजा, उनके साथ में लक्ष्मण और वो चली गई, और इधर में महाराज दशरथ तुम्हारे बीरा में, उनके बीरा राम के बीरा में राम राम कहते हुए गोलोक सिधार गए। वो मेरे लिए तुमने महाराज दशरथ को मारा और हमारे भैया को और हमारी आराध्या सीता जी को, हमारे भैया लक्ष्मण जी को तुमने बन भेजवा दिया, तुमसे हमारा कोई भी संबंध नहीं। और ये कह करके महाराज वशिष्ठ जी को बुलवाया और सबको लेकर के सुना जे वो अभी कहाँ है, चित्रकूट में है। सब लोगों के साथ में चित्रकूट में भैया को मनाने के लिए, राम को बनाने के लिए गए। राम अपनी पिता का पहला संतान है, इसलिए वही अधिकारी राज्य का है, वह राज्य उसी का है, नहीं तो हमें बड़ा दुख होगा। जब वहां पर गए, महाराज जनक जी आ गए सुनैना के साथ, अब राम से मिले, उनको पता चला कि महाराज दशरथ का अंतकाल हो गया, तो वहीं पर नदी में वो जाकर के महाराज दशरथ के लिए पानी दिया, उनका संस्कार जो होता है उन्होंने पिता का के प्रति किया, उनको जल इत्यादि उनको प्रदान किए, और उनको वो जो दिया जाता है पिंड दिया, किसी का इमली के बीज के आटे बना करके और उससे उनको पिंड दिया, और वहां पर और क्या मिलेगा जंगल में। देने के बाद में लौट करके आए, भरत जी रात में कौशल्या मैया के पास में, मैया एक बात करो, मैं तुम्हारा बेटा हूं ना, कहां तुम भेजा है? देखो एक बात करना, राम तुम्हारे आदेश को टाल नहीं सकता, कभी नहीं टालेगा, जो तू कह देगी वो जरूर मानेगा, तो एक बार तुम राम से कह दो जैसे तुम अयोध्या में लौट जाओ और राज्य तुम ही संचालन करो, भर तुम्हारा सेवक को करके रहेगा। बेटा मैं तो ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं क्या धर्म की बात कर रहा हूं? नहीं, तुम कहते हो रही कर रहा है ठीक, मैं नहीं कर सकता। राम भी तो धर्म के पथ में अपने पिता के आदेश के लिए आया है पालन कर, मैं उसे कैसे कह दूं ये तुम अयोध्या में चलो? मैं नहीं कर सकता, बड़े धर्म संकट में। उसी समय में फिर वो वशिष्ठ जी के पास में गए, वशिष्ठ से जी बोले जी गुरु जी आपसे एक प्रार्थना है, राम भैया के लिए आप ये आदेश दे दीजिए, चलो लौट चलो और राज्य ग्रहण करो। उन्होंने कहा जी बेटे मैं कैसे कहूं, तो मैं क्या अधर्म कह रहा हूं? मैं ठीक बात नहीं, तू बात ठीक कर रहे, किंतु मैं ऐसे वो भी तो अधर्म में नहीं है, वो भी माता पिता के आदेश से आया है, मैं कैसे कहूं ये धर्म को छोड़ करके तुम चलो अयोध्या में राज करो। हाँ एक बात हो सकती है, तुम उसके बदले में यदि चले जाओ जब वन में तो राम को मैं कह दूंगा जैसे ये आप तुम्हारे बदले में ये जा रहा है वन में और तुम लौट जाओ। तो उन्होंने कहा मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूं, मैं जरूर उनके बदले में बन जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं इस प्रकार से उनसे बातचीत करूंगा तब बतलाऊंगा। बात यहां पर भी बनी नहीं, सुनैना जी के पास में गए। सुनैना कौन? सीता जी की मैया। उनके चरणों में प्रणाम किया, मैया एक बात है, तुम्हारी बेटी बड़ी सुकुमार सीता है, वन में कैसे जाएगी? मच्छर सांप बिच्छू काटेंगे, नोकीले पत्थर चरणों में लगेंगे, जो कभी आज तक वन में नहीं गई फूलों की सज्जा पर रही आज वो बन बन में फटते ही है, तुम देखना चाहती हो? इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम महाराज जनक से कह दो, उनके ऊपर में भार दिया गया है राम को समझाने के लिए, इस समय वो उनके पिता भी हैं गुरु भी हैं और अपनी कन्या का दान भी किया इसलिए पिता स्वरूप हैं, उनकी बात को राम नहीं टालेगा। उन्होंने कहा जैसे मैं उनसे निवेदन करूंगी किंतु वो तो वही करेंगे जो चाहते हैं वो करेंगे, वो हमारी बात मानेंगे या नहीं मैं नहीं कह सकती। बड़े दुखी हुए, लौटे। दूसरे दिन सभा हुई, वशिष्ठ जी और सारे ऋषि लोग सब एक तरफ बैठे, राम लक्ष्मण सीता और वहां के ऋषि लोग एक तरफ में बैठे, माताएं सब एक तरफ में बैठी और गुरुजन, और बीच में महाराज जनक बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा मेरी बुद्धि समय विकृत हो गई है, इसलिए मैं निर्णय नहीं कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए। भरत कहता है कि राम जी लौट करके चलें और राज्य ले लें, जैसे एक गेंद को दो भाई खेलते हैं तो एक मारता है उधर गोल में और उधर मार रहा है उधर गोल में, राज्य को ठुकरा रहे हैं जिसके लिए आजकल लड़ते हैं, उस समय में त्रेता युग था, दोनों भाई उसको ठुकरा रहे हैं, इसलिए मेरी बुद्धि इसमें चकरा रही है मैं क्या करूं, इसलिए आप निर्णय दीजिए, आप इनके पिता हैं आपकी बात को ये खेल नहीं सकते हैं मना नहीं कर सकते, इसलिए आप आदेश दीजिए जो उचित है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे आदेश नहीं देता, पूछो मेरी बात मानेंगे ये? राम से पूछा वशिष्ठ जी ने, इनकी बात मानोगे? हमारे पिता हैं हमारे गुरु भी हैं और इस समय ये ही माझी माने नौका खेने वाले हैं दोनों वंशों का, हमारे का भी और इधर का भी, इसलिए इनकी बात हम जरूर मानेंगे। राम ने कहा जी जरूर अवश्य में जो कुछ कर लेंगे हम मान लेंगे। भरत से पूछा जरूर हम अब इनके ऊपर में विश्वास करते हैं, हमारे गुरु हैं हमारे हित की ही बातें करेंगे इसलिए जो कुछ कहेंगे हम जरूर मान लेंगे। दोनों का आश्वासन देने प्रतिज्ञा करने के बाद में उन्होंने अपने गुरु शंकर जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे आदेश मांगा और आदेश में उनको जो वाणी हुई वो दूसरों को सभा में कहने लगे। देखो राम धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम है, हिमालय जैसे टल नहीं सकता ऐसे अपने धर्म से नहीं टल सकता, और भरत जो है ये भक्ति की सीमा है प्रेम की सीमा है, प्रेम मर्यादा कुछ नहीं देखता, कालापति है या कैसा है वो नहीं देखता, प्रेम सब प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ करके चलता है। गोपियों ने देखो धर्म की मर्यादा कुल की मर्यादा पति प्रथा धर्म सबको जलांधि लेकर के कृष्ण से प्रेम किया, इसलिए प्रेम मर्यादाएं को डुबा देता है। तब भरत का प्रेम है जो राम रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम को भी डुबा देगा, इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर भरत की जीत हुई। भरत क्या चाहता है, राम को पालन करना होगा। सब सुनकर के बड़े खुशी हुई जितने अयोध्या हुई के, भरत को सुनकर के हृदय उछल गया, बांसों बड़े प्रसन्न हो गए। सब लोग जितनी प्रजाएं थी सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई, या अब तो राम को लौटना पड़ेगा। पर देखो एक बात है, प्रेम की भी अपनी मर्यादा होती है, प्रेम की मर्यादा। राम भी धर्म के पक्के मर्यादा वाले करने देने वाले हिमालय की तरह अस्त्र हैं, ये प्रेम में डूब जाएंगे किंतु मर्यादा को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि भरत की तो जीत हुई किंतु प्रेम की भी मर्यादा होती है। प्रेमी भक्त ये देखता है कि हमारा प्रभु क्या चाहता है, हमारा प्रियतम, हमारा आराध्य जो प्रभु है वो क्या चाहता है, उसी को वो करता है। जो उनके लिए रुचकर नहीं होता नहीं करता। अब भरत राम से पूछे, राम क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है पूछो, और तब वैसा करो। उस समय भरत जी की आंखें खुली और वशिष्ठ जी और जनक महाराज के चरणों में प्रणाम। ओहो, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा, मैं तो ये अपनी प्रसन्नता देख रहा था। राम चलेंगे, हमारा हृदय आनंद से भर जाएगा, हम लोग सभी लोग उनकी सेवा करेंगे। किंतु राम की इच्छा क्या है ये तो मैंने कभी विचार नहीं किया। भक्ति उसी को कहते हैं जो कृष्ण की इच्छा क्या है, कृष्ण क्या है चाहते हैं, उनके लिए कौन सा सुखकर होगा, उनके मन में क्या इच्छा है उसको पूर्ण करना, ये भक्त का कर्तव्य होता है। भरत जी अब उनके चरणों में गिर पड़े, भैया मैं गलती में था, आपको मैंने कभी विचार नहीं किया, मैं अपने सुख की तरफ में और सब लोगों के सुख को देख रहा था, किंतु आपको किस में सुख है ये मैंने कभी नहीं विचार। खूब अच्छी तरह से समझो, अपने सुख की को भक्ति नहीं करते, कृष्ण की सेवा करने से मुझे सुख होता है, तो तुम भगवान को क्या हुआ, भक्ति नहीं हुई। ये देखो जो भगवान को उससे सुख होता है कि नहीं। गोपियां अलंकार धारण करती हैं, सिंदूर लगाती हैं और बड़े आनंद से रहती, किसके लिए? गोपियां अपना श्रृंगार करती हैं अपने सुख के लिए। राधा जी देख रही हैं दर्पण में अपना, ओ आज हमको देख करके कृष्ण आज मचल जाएंगे, आज बड़े सुखी हूं, इसलिए बनती ठनती हैं। और जब देखेंगे जी इससे कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होती है तो कुछ भी नहीं करेंगे। जिसे वो प्रसन्न होंगे अपनी शौक को भी उसके घर में सेवा करके और प्रसन्न करके कृष्ण से मिलाएंगी। हम स्त्रियां नहीं कर सकती, हमारे पति एक दूसरी स्त्री से मिलना चाहता है तो जल करके भस्म हो जाएंगे, किरासन तेल में जला करके अपने को, ऐसा नहीं मान सकते। किंतु गोपियां राधा जी कहती हैं कि कृष्ण को यदि आनंद होता है तो मैं उसकी दासी बन करके सेवा करके और कृष्ण से मिला, अपना सुख नहीं चाहते। नागनी अपनी सुख सबे वांछी तारी सुख, तार सुख मोह तात्पर्य मुरे जेति दिले दुख है, तार ही महासुख से ही सुख सुखवर। यदि मुझे कष्ट देने से मुझे पीस दें तभी हमारे प्राण, यदि हमारे सामने ही दूसरों स्त्रियों से बातें करते हैं तो हमको बहुत स्नेह, सब प्रकार से हमारे प्राण। अब भरत जी रामचंद्र जी के चरण में, प्रभु आपकी क्या इच्छा है, अब तक मैंने अपनी इच्छा से काम कर रहा था। रामचंद्र जी ने कहा जी तुम्हारी विजय हुई है, तुम आए थे राज्य लौटाने के लिए, मुझे राजा बनाने के लिए, तो मैंने राज्य ले लिया, अब यह राज्य मेरा है। तब एक बात करो, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो, अयोध्या में लौट जाओ, 14 वर्ष तक जब तक कि मैं नहीं आ जाऊं मेरे राज्य को देखना भालना, प्रजाओं को दुख न हो और सब भैयाओं को देखना और सब लोगों को देखना, ये तुम्हारा अब कर्तव्य है। तुम राजा नहीं हो, राजा कौन? मैं, और तुम हमारे दास हो, ये ठीक है, हमारे सेवक हो, मैंने अयोध्या का राज्य, उन्होंने क्या किया, उनका आदेश लिया माथे पर, उनकी खड़ाऊं ले ली, या राजा रहेगा या खड़ाऊं, और नंदीश्वर नंदीग्राम में उसकी स्थापना करके राज्य में नहीं लौटे, अयोध्या में नहीं लौटे, और वहीं पर रह करके खड़ाऊं की पूजा करते और राज्य का संचालन करते। एक दिन भी यदि देरी हो जाएगी प्रतिज्ञा किया राम से, यदि विलंब हुआ आपके आने में शरीर को जला करके खत्म कर दूंगा। इसलिए राम को चिंता हो गई, इसलिए एक दिन पहले ही विमान पुष्पक विमान से आए, नंदीश्वर में उनसे मिले और फिर वहां से लौट करके राज्य भक्ति इसको कहते। अपने सुख मत देखो, अब यह आरंभ कहां से होगा, ये गुरु से। जीता जाता इस जगत में गुरु ही भगवान है। भगवान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिव्य भगवान और एक होता है सेवक भगवान। सिव्य भगवान कौन है, कृष्ण, राधा जी, रामचंद्र जी, और सेवक भगवान भक्त लोग हैं, गुरु लोग हैं। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य प्रसादानि नगति कृतो, जिनकी कृपा ही भगवान की कृपा है, और यदि उनकी कृपा नहीं हुई तो भगवान की कृपा भी व्यर्थ है। ऐसे गुरु सद्गुरु, उनका चरणाश्रय लेकर के हम लोग भगवान का भजन। गौ प्रेमानंदे, जय 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 श्री राधे, बोल से जोर से जय जय श्री राधे, और जोर से जय जय श्री राधे। एक महामंत्र है, तुम आरती करो।
Thus ends the class on the 5th of February 2002 in Lautoka in the evening. Hare Krishna.